हेलो एंड वेलकम टू द हरियाणवी पॉडकास्ट। भाई यो हमारा 89th एपिसोड है और मैंने इससे पहले सीरीज़ बनाई थी एक हरियाणा की हिस्ट्री पे। काफ़ी आइडियाज़ ओरिएंटेड सीरीज थी, इवेंट्स ओरिएंटेड, और बहुत लोगों ने वो पसंद करी। तो इसी सिलसिले में मैं आगे कोशिश कर रहा हूँ कि हरियाणा की पॉलिटिकल हिस्ट्री, जो पॉलिटिकल एक्टर्स रहे, लीडिंग पर्सनैलिटीज़ रही, उनके बारे में बात करी जाए। लेकिन उससे पहले एक इसे शख्स की, किसी पर्सनैलिटी का मैंने जिक्र करना ज़रूरी है, का एपिसोड में बढ़ाना ज़रूरी था, जो भारत का ना केवल प्रधानमंत्री रहा है, एक फार्मर लीडर रहा है। और रिसेंटली 3-4 एपिसोड हमने बनाए जो फार्मर मूवमेंट हुआ, किसान आंदोलन हुआ, उस पर। तो आज जिस शख्स के बारे में बात करेंगे वो थे चौधरी चरण सिंह जी, भारत के प्रधानमंत्री रहे, बहुत बड़े किसान लीडर रहे अपने टाइम के, यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रहे। और उनके बारे में बात करने खातिर हमारे के लिए आज जुड़े हैं प्रोफेसर प्रवीण ढांडा जी। प्रवीण सर जो आईपी कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के, और PhD और MPhil करी है अपनी JNU तक। तो प्रवीण सर राम राम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल
राम राम निशांत भाई, ठीक ठाक सुनाओ। बहुत बढ़िया प्रयास है आपका, जो अपने दर्शकों और अपने जो श्रोता हैं उन सबको भी, सब को तहे दिल से राम राम भाई।
थैंक यू सर। और सर मेरा पहला सवाल तो आपका है, बेसिक ये होगा कि चौधरी साहब के बारे में इंटेलेक्चुअल राइटिंग करना, एकेडमिक डिस्कशन में उनके आइडियाज ने लेकर आना, ये आइडिया का आपको कितना आया? क्योंकि बहुत लोग, कम लोगों ने काम करा है उनकी, जो एक आइडियाज की, एक एकेडमिशियन जो उनकी साइड थी, एक स्कॉलर की, बहुत लोग, कम लोगों ने वो छुई है। तो आपको आइडिया कितना आया वो कि चौधरी चरण सिंह के आइडिया से हमने काम करना चाहिए?
निशान भाई, इसकी हिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी दिलचस्प है कि मैं अपने एमफिल के दौरान मैं कुछ काम करना चाहता था अल्टरनेटिव डेवलपमेंट पे।
जी
विचार अगर भारतीय चिंतन में हैं तो उन पर काम करना चाहता था। तो इस खोज में मैं, तीन मूर्ति लाइब्रेरी है एक दिल्ली में, नेहरू मेमोरियल
जी
म्यूजियम
जी
लाइब्रेरी, तो मैं वहां जाता था। तो तकरीबन जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है उसको देखता था। तो एक दिन मैंने वहां पे एक किताब देखी कि इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन, उस किताब का नाम था और उसपे चरण सिंह ऑथर थे। मुझे नहीं पता था कि चरण सिंह बहुत सारी किताबें लिखी हैं। मुझे ये जरूर पता था अपने घर के कॉन्टेक्स्ट से कि उन्होंने नेहरू को अपोज किया था
जी
कोऑपरेटिव फार्मिंग के
हाँ
कॉन्टेक्स्ट
जी
में। मुझे ये नहीं पता था कि उसका कुछ एक बौद्धिक आयाम भी था। तो चरण सिंह की लेखनी के बारे में मैं वाकिफ नहीं था। उनकी पॉलिटिकल, वो प्रधानमंत्री रहे, और एक जो जीके की बुक्स में एक अक्सर क्वेश्चन आता है कि अच्छा ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी संसद फेस नहीं की,
हाँ जी हाँ
तो इस
जी
तरीके के सवालों से मैं वाकिफ था, पर इस बात
जी
से नहीं था कि उनकी लेखनी से मैं वाकिफ नहीं था।
जी
तो मैंने वो किताब जिज्ञासा वश जो है वो निकाल के देखी, तो मैंने पाया कि वो किताब जो है वो तो बेहतरीन और शानदार किताब है, और एक तरीके से एक पूरा नया दृष्टिकोण है भारत की जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल इकोनॉमी जिसको कहते हैं, उसको समझने का। बल्कि ना केवल भारत की पॉलिटिकल इकोनॉमी को अलग ढंग से देखने का, बल्कि मुझे लगा कि जो भी मुख्य धारा की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो समझ है उसके
जी
अलग, उससे एक अल्टरनेटिव, उसका एक वैकल्पिक रूपरेखा प्रदान करती है, मुझे ऐसा लगा वो उस किताब को देख के। तो मैं और इंटरेस्टेड हुआ और मैंने फिर इस चीज में थोड़ा सा और जाना। तो फिर तीन मूर्ति में ही उनके पर्सनल पेपर्स हैं चरण सिंह के, तो
अच्छा
वो पर्सनल पेपर्स मैंने उनके देखे, और वो भी देख के मैं बड़ा, मतलब, अचंभित हुआ। क्योंकि अक्सर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके जो पर्सनल पेपर्स हैं वो इतने व्यवस्थित और इस तरीके के नहीं होते जैसे कि चरण सिंह के। तो करीब 2.5-3 लाख पेजेस हैं उनके पर्सनल पेपर, जो कि मतलब एक खास बात है, क्योंकि इतने पर्सनल पेपर्स शायद ही किसी राजनेता के होते हैं, और इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड ढंग से उन्होंने उनको रखा, और अब वो तकरीबन सारे वहां तीन मूर्ति लाइब्रेरी में हैं। तो वो पर्सनल पेपर्स देखे तो मैं और ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड हुआ, और फिर जो है मैंने इस बारे में थोड़ा सा और पढ़ा और जाना। तो फिर इस तरीके से उनके विचारों में और उनके जीवन में मुझे दिलचस्पी हुई और ये बात फिर आगे बढ़ी।
बिल्कुल बहुत सही बताया सर आपने, और मेरे लिए भी बड़ा कहते हैं हैरत अंगेज सा चीज़ थी कि जब मैंने पहली बार आपका आर्टिकल पढ़ा गूगल के थ्रू, मैं कुछ और सर्च कर रहा था और आपका आर्टिकल पॉपअप हो गया ईपीडब्ल्यू के ऊपर, तो मैंने सोच मैंने मुझे लगा ही नहीं था मैं, और वो जो कोऑपरेटिव फार्मिंग वाली आपने बात करी ना, वो मैंने भी अपने घर में सुन रखी थी कि नेहरू की जो सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी थी इसके बारे में वो उन्होंने अपोज करी थी, लेकिन आइडियाज़ के लेवल पर कि इतना डीप रूटेड स्कॉलरी बैकग्राउंड और एकेडमिशन भी कोई पॉलिटिशियन, एक फुल टाइम करियर पॉलिटिशियन हो सके, तो इट वॉज क्वाइट शॉकिंग। और तो सर मैं सबसे पहले आप तो एक चाहूंगा कि आप थोड़ा ब्रीफ स्केच हमने चौधरी साहब की लाइफ का अगर दे दो 2-3 मिनट के अंदर।
अच्छा ठीक है निशान भाई, तो ऐसा है कि चंद सिंह के जो पिताजी थे, मैं सोशल हिस्ट्री और उन पर ज्यादा फोकस रखूंगा। चंद सिंह के जो पिताजी थे वो एक टेनेंट फार्मर थे, तो एक उनका जो लोकल जमींदार था कुचेसर का, कुचेसर एक जगह है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, वहां पर तो उसमें एक गांव था नूरपुर, वहां पर चंद सिंह का जन्म हुआ और 23 दिसंबर को, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है उनकी जो स्कूल एजुकेशन है वो हुई आसपास के ही जगहों पे मेरठ सिटी में, और उसके बाद उन्होंने बीए की, एमए की, एलएलबी की, एलएलबी उन्होंने मेरठ कॉलेज से की और एमए उन्होंने आगरा कॉलेज से की, और बैचलर बीए नहीं की, एक्चुअली उन्होंने बीएससी की आगरा कॉलेज आगरा से, और उसके बाद एमए की हिस्ट्री में और फिर एलएलबी की। और इसके बाद वो 1928 में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी गाजियाबाद में, और उसके बाद बहुत अर्ली लाइफ में, जैसा कि उस टाइम पे आजादी का आंदोलन था, तो बहुत अर्ली लाइफ में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जब कांग्रेस ज्वाइन की वो मात्र 27 साल के थे जी। और फिर लगभग 1929 से 1967 तक वो लगभग 38 साल वो कांग्रेस में रहे, और उसके बाद फिर उसी दौरान ही वो आर्य समाज की सारी गतिविधियों में भी एक्टिव थे। और तो कांग्रेस और आर्य समाज ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने उनको शेप किया, और इसी में ही हम ये भी कह सकते हैं कि दो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जिनसे कि वो सबसे ज्यादा इम्प्रेस्ड थे, एक थे गांधी और दूसरे थे दयानंद, तो गांधी जी और दयानंद सरस्वती दोनों के विचारों से वो खूब प्रभावित थे, जैसा कि उनकी सारी लेखनियों में मिलता भी है। दयानंद सरस्वती पर भी उन्होंने बहुत अर्ली एज में कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, और गांधी पर भी उन्होंने गांधी के विचारों पर लिखा है। तो उसके बाद वो पहली बार जो इलेक्शन जो उन्होंने लड़ा वो अनोपोज्ड उन्होंने जीता, वो था मेरठ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का 1931 में, और उसके बाद फिर 1937 में 1937 में इलेक्शंस होते हैं यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसमें भी वो चुने गए, और उसके बाद लगभग 8 बार वो छपरौली से विधायक रहे फ्रॉम 1937 टू 1974। तो इस दौरान जो उन्होंने काम किए, जैसे कि 1938 में वो एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट बिल उन्होंने ड्राफ्ट किया, इम्पोर्टेंट आप उसे मान सकते हैं बिल, उन्होंने एक प्राइवेट बिल के तौर पर उसे पेश किया था यूपी की असेंबली में, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, और क्योंकि बहुत सारे जो इंट्रेंस्ड जो
लैंडेड एलीट्स थे, एरिस्टोक्रेट्स थे शायद, उस वजह से
लैंडेड एलीट्स क्या जो हमारे मर्केंटाइल कम्युनिटीज के जो इंट्रेंस्ड एलीट थे उन्होंने उसको अपोज किया, लेकिन यही बिल बाद में सर छोटू राम के द्वारा वो पंजाब विधानसभा में उसे पास किया गया। तो इसी बारे में उन्होंने 1939 में एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल भी लिखा था जो 2 हिस्सों में प्रकाशित हुआ था हिंदुस्तान टाइम्स में, और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे कुछ बिल जो है उनके भी वो इम्पोर्टेंट आर्किटेक्ट रहे, और फिर उसके बाद एक उसी दौरान वो एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट उनके राइटिंग्स में मिलता है, जिसमें कि वो 50% जो पोजीशंस हैं उन पब्लिक सेक्टर जॉब्स की उनको रिजर्व करने की बात करते हैं फॉर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट एंड कल्टीवेटर्स।
बिल्कुल,
तो ये इसकी जो भाषा है और जो डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज है वो बहुत मायनों में, मतलब उसको यू कैन रीड बिटवीन द लाइंस ऑल्सो, एंड और वो एक तरीके से मुझे बहुत एक फैसिनेटिंग डॉक्यूमेंट लगा। तो ऑफ कोर्स इस तरीके के रेजोल्यूशन जो उन्होंने या प्रस्ताव उन्होंने जो कांग्रेस के सामने कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी जो थी उसके सामने जो पेश किए वो कभी एक्सेप्ट नहीं हुए। तो उसके बाद वो कई बार जेल गए आजादी के आंदोलन के दौरान, लगभग तीन बार वो जेल गए,
तीन बार, एक बार में ख्याल से दांडी मूवमेंट के दौरान, एक बार इंडिविजुअल
था, बिल्कुल,
और क्विट इंडिया के दौरान,
बिल्कुल एक बार क्विट इंडिया के दौरान, तो ये तीन बार वो जेल गए। तो कांग्रेस में एक इम्पोर्टेंट लीडर रहे लोकल लेवल पर। तो एक खास बात जो चरण सिंह की हमें देखने को मिलती है कि वो बहुत चुनिंदा उन लीडर्स में से थे आजादी के बाद के जिन्होंने तकरीबन हर स्तर पर हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर काम किया। उन्होंने लेवल पे काम किया, स्टेट लेवल पे काम किया, नेशनल पॉलिटिक्स में काम किया। तकरीबन सारे लीडर्स या तो नेशनल पॉलिटिक्स में थे, फिर नेशनल लेवल पर ही काम करते रहे, कोई उनकी स्टेट लेवल पे बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स नहीं थी। चरण सिंह ने बहुत लोकल स्तर से शुरू करके और ऊपर तक गए। दूसरी खास बात ये आती है कि ये जो आजादी के बाद के खासतौर से हमारे जो प्रमुख लीडर रहे पहले तीन चार दशक में, बहुत कम, मोस्ट ऑफ देम वर मेन ऑफ अर्बनिटी, मोस्ट ऑफ देम केम फ्रॉम अर्बन एरिया। चरण सिंह वॉज ऑल्सो यूनिक अमंग देम बिकॉज ही केम फ्रॉम द कंट्री साइड एंड बिकॉज ऑफ हिज सोशल लोकेशन ही अंडरस्टूड कंट्री साइड in a far nuanced way than these leaders.
बिल्कुल बिल्कुल सर।
तो
मैं उस पे आऊंगा
लेकिन एक तरीके से फिर एक 1946 में 1946 में वो एक जमींदारी एबॉलिशन के लिए उन्होंने एक कमेटी बनी और जिसके कि वो एक मेंबर थे और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस जमींदारी एबॉलिशन कमेटी, और ये भी बहुत शानदार रिपोर्ट है और ये इसके ये की आर्किटेक्ट थे। इसी रिपोर्ट के आधार पर बाद में चल के उन्होंने जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स बिल उत्तर प्रदेश का, जो कि बहुत ही एक रेडिकल बिल माना जाता है, वो पेश किया और अपना जो और इसी के आधार पर ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी को भी का भी उन्मूलन किया। ये जमींदारी का जो उन्मूलन था ये चरण सिंह अपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल जो स्टेप्स थे उनमें से मानते थे, जो बाद की उनकी राइटिंग्स में मिलता है। जैसे उन्होंने एक बाद में लेट 1980s में एक किताब है उनकी जिसमें कि वो इसे अपने जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वो डिसीजन बताते हैं और काम बताते हैं। तो इसमें क्या था कि लगभग 30 लाख जो किसान थे, स्मॉल जो छोटे टेनेंट फार्मर्स थे, उनको उन्होंने पट्टे का अधिकार दिया, मतलब परमानेंट लैंड राइट्स जो है उनको मिले। तो ये एक बहुत ही रेडिकल स्टेप था खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये उतना महत्वपूर्ण हमें नहीं दिखता, लेकिन अगर आप ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जाएं तो वहां पर आप देखेंगे कि बहुत एक स्थापित सिस्टम था जमींदारी का और उसको काटना और उसके अगेंस्ट और काम करना तो ये बहुत ही एक मतलब साहसी कदम भी था, न केवल मतलब
सही कहा, क्योंकि जो अवध का एरिया है ईस्टर्न यूपी का, उसमें जो कॉर्नवालिस के टाइम से जो परमानेंट सेटलमेंट थी वो बिल्कुल एंट्रेंस थी बंगाल बिहार और ईस्टर्न यूपी में, तो शायद यहाँ इस तरफ हमारे यहाँ सिस्टम नहीं था वेस्टर्न यूपी में। सर मेरे एक सवाल इमर्ज हो रहा है इस टाइम पे आपसे, जो मैं कन्वर्सेशन काट के आपको खता कला दूंगा, तो क्योंकि मैंने ना अभी सर छोटू राम पे का एपिसोड बनाया था तो मुझे बहुत सिमिलरिटीज नजर आ रही है, आर्य समाज का इन्फ्लुएंस, लॉ करना, पॉलिटिक्स में आना, और फिर यही जो आपने बताया ना एपीएमसी बिल 1938 में, ये भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने, वो पंजाब में मिनिस्टर हो गए यहाँ एग्रीकल्चर में हमारे हरियाणा पंजाब में। तो इन दोनों के कोई आइडियाज का आदान प्रदान था, इन दोनों पर्सनैलिटीज के बीच में कोई मीटिंग थी आपस में, क्योंकि चरण सिंह वॉज ऑब्वियसली वेरी जूनियर टू हिम एज एज वेल एज टीचर उस टाइम पे, प्री इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो क्या कोई एक्सचेंज था आइडियाज का, कोई आदान प्रदान था, या ये दोनों अपने सिलोज में काम कर रहे थे अलग-अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में?
देखो जो पर्सनल पेपर्स हैं चरण सिंह के उसमें इस तरीके का कुछ नहीं मिलता है कि इनके बीच में कोई आइडियाज का या कोई पर्सनल मीटिंग के लेवल पे कोई आदान प्रदान हो, और उसका कारण ये भी था क्योंकि चरण सिंह कांग्रेस में थे और हमको पता ही है कि सर छोटू राम जो है वो उनकी अपनी पार्टी थी। तो कोई इस तरीके का, क्योंकि और जब देखिए कि जब छोटू राम की जब मृत्यु होती है उस टाइम पे चंद सिंह कोई बहुत एस्टेब्लिश्ड लीडर नहीं है,
हाँ जी,
है ना, उस टाइम पे वो एक एमएलए मात्र है, उससे पहले भी फिर बाद में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज में ने रिजाइन कर दिया था, तो कुछ दिन एमएलए ही रहे हैं, है ना, तो उससे ज्यादा कोई वो कोई बहुत एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल लीडर नहीं है उस टाइम पर। सर छोटू राम बहुत बड़े लीडर हैं
जी, बिल्कुल।
तो हाँ, ये जरूर है कि एक उनके जो पर्सनल पेपर्स में एक मीटिंग का, तो वो मीटिंग हुई या नहीं हुई ये उसमें नहीं आता, लेकिन एक टेकराम होते थे जो कि छोटू राम जी के साथ काम करते थे, चौधरी टेकराम, तो उनके साथ जरूर एक बार मीटिंग की बात होती है, वो मीटिंग हुई या नहीं हुई ये उसमें क्लियर नहीं है पेपर्स
जी। और तो, शायद ये भी एक रीजन रहा है कि चरण सिंह की जो पॉलिटिक्स थी वो बिल्कुल ही, मतलब कास्ट का उसमें कहीं नाम नहीं था, वो तो कास्ट आधारित जो सभाएं होती थी उसमें जाते भी नहीं थे, और छोटू राम की पॉलिटिक्स काफी अलग थी, वो कम्युनिटी बेस्ड थी, उसमें जाटों की सियासत बहुत हद तक मतलब उसके सेंटर में थी अपनी कम्युनिटी की, तो किसान के अलावा भी, किसान तो दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन शायद कास्ट पॉलिटिक्स और कम्युनिटी पॉलिटिक्स चरण सिंह की जी की पॉलिटिक्स में, उनकी आइडियोलॉजी में कहीं थी नहीं।
हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि चंद सिंह के जो विचार थे उसमें चंद सिंह एकदम खांटी, एकदम एंटी कास्ट आदमी थे, और जैसा कि हम अभी जिक्र भी करेंगे कि एक बार उन्होंने 1954 में नेहरू को चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि आप जो है एक लॉ बनाइए कि जिसमें ये निश्चित कीजिए कि जो लड़के और लड़कियां अपने शादी अपनी कास्ट के बाहर करेंगे उनके लिए कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी गजेटेड गवर्नमेंट सर्विसेज। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चरण सिंह जो है कास्ट में यकीन बिल्कुल नहीं रखते थे, और कास्ट का एक जो कोर फीचर है वो है एंडोगेमी, कि आप अपने जो कास्ट, यू मैरी विद इन द नैरो सर्कल्स ऑफ योर कास्ट, राइट। So, and Chan Singh was dead opposed to it, and he believed that endogamy is the bedrock of caste, like Ambedkar, and therefore he also wanted to, you know, break caste by, you know, breaking endogamy.
Yes.
So, इस मामले में थोड़ा दोनों का नजरिया अलग है, वो मेरे ख्याल से उसके कारण भी कुछ होंगे, क्योंकि दोनों के influences जो हैं वो थोड़े से अलग हैं।
अलग हैं।
तो हाँ। तो
सर हम वापस आते हैं आपकी डिस्कशन
वापस,
पोस्ट इंडिपेंडेंस।
हाँ, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है, ये जो मैं बात कर रहा था कि ये जो जमींदारी एबॉलिशन हुआ, ये एक तरीके से काफी बड़ा और रेडिकल स्टेप था, क्योंकि लगभग 30 लाख किसान परिवारों को इसमें पट्टे का अधिकार मिला, और जिसमें से कि 30 लाख में से करीब 10 लाख जो है लोग कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोग थे
जी।
तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए कि उनके जो राजनीतिक जो डिसीजंस हैं वो एक सेकुलर आइडेंटिटी, सेकुलर का मेरा मतलब यहाँ पर लौकिक आइडेंटिटी, जैसे कि किसान एक पॉलिटिकल इकोनॉमी की कैटेगरी, जैसे कि किसान
जी।
तो उसके आधार पर हैं, जाति के आधार पर नहीं है, है ना। तो इस तरीके से ये जो लैंड, ये जो जमींदारी एबॉलिशन है, इसका काम होता है, और फिर वो इसी दौरान वो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते हैं, और 1959 में बहुत फेमसली ही स्पोक अगेंस्ट जवाहरलाल नेहरूज सोवियत इंस्पायर्ड प्रपोजल, यू नो, फॉर ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग, और जिसमें कि वो पहली बार लाइमलाइट में आते हैं नेशनल लेवल पर, क्योंकि उस वक्त पर पंडित नेहरू को ओपोज करना काफी मतलब साहस का काम था। तो लेकिन वो एक घंटा बोले, और इसी दौरान ही वो एक, ये एक बात देखिए आप निशांत की
जी,
जब वो ये कर रहे हैं, वो जब वो भाषण दे रहे हैं, तो सिर्फ भाषण नहीं दे रहे हैं, उसी दौरान वो एक और बुक, उनकी एक बुक पब्लिश होती है, जॉइंट फार्मिंग एक्सरेट द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। तो इस, ये बुक जो है ये अपने आप में एक बेहतरीन किताब है, जॉइंट फार्मिंग एक्सरेट नाम ही इसका, बहुत फैसिनेटिंग है। तो इसमें वो बहुत ही डिटेल्ड तरीके से, लाइक अ पीएचडी थीसिस, एक आर्गुमेंट डेवलप करते हैं जॉइंट फार्मिंग के अगेंस्ट, और एक तो आप देखेंगे कि उनकी जो पॉलिटिकल प्रैक्टिस है और जो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिस है, बोथ वर फीडिंग ईच अदर, लाइक दोनों में एक गजब की तारतम्यता है आप देखेंगे कि
सिंक में चल रही है जैसे दोनों ना, हाँ, एकेडमिक लाइफ और उनकी पॉलिटिकल लाइफ में जो
उनकी पॉलिटिकल लाइफ, हाँ, तो वो ये एक अलग बात आती है चरण सिंह, मतलब एक यूनिक है बहुत सारे लीडर्स में, क्योंकि तकरीबन लीडर्स जो हैं आजकल वालों में तो पढ़ने लिखने का चलन बहुत कम है कि हम जानते ही हैं, तो लेकिन उस वक्त के बहुत सारे लीडर्स पढ़ा लिखा करते थे और एक चीज की बहुत डिटेल स्टडी भी किया करते थे
जी।
तो लेकिन इस तरीके के काम उनमें भी बहुत कम है। देखेंगे अगर हम मान लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू को देखेंगे तो उनकी किताबें हमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो इस तरीके से उनकी किताबें हैं, लेकिन वो एक हिस्ट्री का एक ओवरऑल एक नक्शा पेश करती है हमारे सामने, तो लेकिन ये किताब जो चरण सिंह की किताबें हैं उन किताबों से थोड़ा उनका स्वरूप अलग है, आर्गुमेंटेटिव स्टाइल अलग है और सब्जेक्ट मैटर अलग है कि जो, और जो उनकी मेथडोलॉजी है वो अलग है। जैसे ये कोई एक जनरल बुक नहीं है जो चरण सिंह की किताबें, इससे पहले वो 1947 में एक और किताब लिख चुके थे एबॉलिशन ऑफ जमींदारी टू अल्टरनेटिव्स, अगर आप इन बुक्स का स्ट्रक्चर देखें तो वो बहुत डीप एकेडमिक बुक्स हैं, वो कोई जनरल बुक्स नहीं है और वो बहुत ही एक नीश, बहुत ही स्पेशलाइज्ड ऑडियंस के लिए लिखी गई किताबें हैं, वो कोई जनरल किताबें नहीं है कि भाई अच्छा भारत में अच्छा भारत एक खोज हो गई और अशोक आ गया और फिर कोई और आ गया आ गए और फिर आते चले गए,
मतलब फिक्शन ऐसा नहीं है जो मासेस को मतलब ध्यान में रख के लिखा गया हो, वो एक रिग्रेस एकेडमिक वर्क है, मतलब उसकी क्वालिटी जो हम रख सकते हैं कि पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी के तहत लिखी गई किताबें हैं और सीरियस एकेडमिक स्टडी है,
सीरियस एकेडमिक स्टडी है, कोई कैजुअल रिफ्लेक्शन नहीं है। जैसा कि बहुत सारे और जो दूसरे लोग हैं, देखिए दो तरीके का स्कॉलर हो सकता है, एक तो इस तरीके का स्कॉलर हो सकता है कि जिसको आप थिंकर कह सकते हैं, तो थिंकर वो है कि जो कुछ ब्रॉड आइडियाज हमको देता है, एक प्रस्पेक्टिव देता है चीजों को पढ़ने के, जैसे कि गांधी की अगर राइटिंग्स पढ़े हम तो वो एक थिंकर के तौर पर उभरते हैं कि he is coming up with a novel perspective to look at some of the fundamental problems of our society and also of the humanity. तो ये तो वो थिंकर की तरह लिख रहे हैं, अगर उनकी हिंद स्वराज पढ़े या कोई भी और किताब पढ़े तो वो एक थिंकर की तरह उभर के आते हैं। स्कॉलर वो हैं कि जो एक 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 एस्पेक्ट लेते हैं और उसकी बहुत डिटेल्ड स्टडी करते हैं, तो चरण सिंह कुछ उस तरीके के हैं। तो थिंकर तो हैं पर उस थिंकर में मतलब स्कॉलर हैं
जी,
बहुत सारे जो दूसरे लोग हैं वो उनके जो उनका जो कैनवास है वो बहुत बड़ा है, जैसा कि गांधी का कैनवास बहुत बड़ा है कि वो एक शाम को खेती के बारे में लिख रहे हैं, अगली शाम को वो किसी इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में कुछ बता रहे हैं, अगले दिन वो चाय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए इस पर बता रहे हैं, तो इस तरीके की राइटिंग नहीं है चरण सिंह की। दोनों में ये अंतर है
बिल्कुल।
तो जो एक कंपेरेबल राइटिंग्स का जो राइटिंग स्टाइल के अगर मेथोडोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे अंबेडकर की जो राइटिंग्स है उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं मेथोडोलॉजिकली हाँ, सब्जेक्ट मैटर में नहीं मेथोडोलॉजी में
जी जी बिल्कुल।
तो
एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस रहा है चौधरी साहब का उनकी राइटिंग्स में, जो आपने बात की 1956 में एक विदर,
हालांकि इसको भी ना एक मैं थोड़ा सा आपको काट रहा था निशान,
हाँ जी,
कि ये जो जैसे हम क्या कहते हैं कि अच्छा इकोनॉमिक्स पे लिखा है, इकोनॉमिक्स नहीं है एक्चुअली वो, अच्छा। वो उससे बहुत बड़ा है, जैसे कि जब पहले जब ये इकोनॉमिक्स तो बहुत नया डिसिप्लिन है, इससे पहले जिसको हम आज पॉलिटिकल साइंस कहते हैं और जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये दोनों इकट्ठे ही डिसिप्लिन थे, इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था क्योंकि ये दोनों डिसिप्लिन सिस्टर डिसिप्लिन हैं, एक दूसरे के बिना नहीं समझे जा सकते। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी उनकी राइटिंग, जैसे कि मान लीजिए वो कहीं पर स्टेट का नेचर के बारे में कुछ अपने रिफ्लेक्शंस दे रहे हैं, तो इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, तो वो एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का आर्गुमेंट है, वो इकोनॉमिक्स का आर्गुमेंट नहीं है। जो इकोनॉमिक्स बहुत नैरो इकोनॉमिस्ट जो होगा वो उन नुआंसेस को कैप्चर नहीं कर पाएगा उनकी राइटिंग्स में। जो सिर्फ पॉलिटिकल साइंटिस्ट होगा जिसने इकोनॉमी का कुछ बहुत ज्यादा नहीं देखा होगा वो भी उनके नुआंसेस कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से पॉलिटिकल इकोनॉमी उसे कहना चाहिए क्योंकि वो उनका बहुत ऐसे इंस्ट्रूमेंटल और जो एक क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स है उस तरीके का की राइटिंग्स नहीं है। उसमें ऑफ कोर्स पॉलिटिकल इकोनॉमी का पुट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम थोड़ा और आगे अगर बढ़ें तो ये हम ऑलरेडी काफी टाइम हमें हो चुका है हालांकि, लेकिन हम थोड़ा सा इसको फटाफट से तो हम अगर देखते हैं कि
हाँ सर, मैं आपका जो आर्टिकल था आइडियाज ऑफ करेंसिंग एंड अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, तो ईपीडब्ल्यू का जो आर्टिकल है उसी से मैं क्रक्स निकालते हुए हम चार मेजर जो आइडियाज हैं आपके उन पे विचार जानना चाहेंगे। तो पहला तो मैं पूछूंगा आपसे वही कि वो दोनों को नकारते हैं, वो एक वो फ्री मार्केट बेस्ड जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको भी नकारते हैं और वो जो कोऑपरेटिव फार्मिंग वाला मॉडल है सोवियत मॉडल उसको भी नकारते हैं, और बात करते हैं कि स्मॉल फार्म्स की, इंडिया की यूनिक प्रॉब्लम्स हैं तो यूनिक सॉल्यूशन हमें चाहिए और एग्रीकल्चर लेड डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो आपके क्या विचार हैं कि ये सोच क्यों डेवलप हुई और बाद में क्या ये पॉलिसी में तब्दील हुई हिंदुस्तान में, क्योंकि हमें दिखता नहीं है, क्योंकि नॉर्वेजियन पीरियड जो है वो कोऑपरेटिव फार्मिंग की आइडिया शायद वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाई लेकिन पॉलिसी लेवल पे वही आइडिया चलते रहे, और अब 90s के बाद पोस्ट लिबरलाइजेशन बहुत अलग एक समा बन गया है। तो आपका क्या इस बारे में विचार होगा?
हाँ निशान, देखिए अगर लैंड सिस्टम की बात करें हम तो दुनिया में बेसिकली तीन तरीके के मॉडल्स हैं जिस ढंग से हम लैंड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहला है कैपिटलिस्ट मॉडल। तो कैपिटलिस्ट जो मॉडल है उसमें, जैसे कि आज यूनाइटेड स्टेट्स में जो है, तो कैपिटलिस्ट मॉडल में क्या है कि बहुत बड़े फार्म्स होते हैं। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में हम जानते हैं कि जो औसत फार्मिंग है फार्म है वो काफी बड़ा है ना? तो कैपिटलिस्ट मॉडल 250-300-400 एकड़ के वहाँ आम फार्म। तो जो पहला सिस्टम है वो कैपिटलिस्ट मॉडल है जिसमें कि बड़े फार्म होते हैं, हम मशीनरी खूब अप्लाई करते हैं उसमें और इस तरीके से खेती होती है और ये आमतौर पे मोनोक्रॉपिंग होती है और एक ही तरीके की फार्मिंग होती है। इस दूसरा मॉडल है जो कि कम्युनिस्ट रशिया सोवियत यूनियन में पर, जिसको कोऑपरेटिव फार्मिंग, कई लोग उसे जॉइंट फार्मिंग और तो उसके अलग अलग नाम हैं, पर मोटे तौर पे आइडिया ये है कि बड़े फार्म होंगे और इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट बहुत एक लंबी इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री है मार्क्सिज्म में जिसको कि ट्रॉट्स्की और लेनिन और बहुत सारे और लोग उसे डिफेंड करते हैं और क्यों वो सुपीरियर है बाकी मॉडल से बताते हैं। तो ये जो दूसरे तरीके, इसमें भी बड़े ही फार्म होंगे जैसा कि कैपिटलिस्ट मॉडल में है, लेकिन इसमें खास बात यह होगी कि जो ओनरशिप है वो किसी एक इंडिविजुअल की नहीं होगी जैसा कि कैपिटलिस्ट मॉडल था, बाकी चीजें कॉमन। जो तीसरे तरीके का सिस्टम है वो है कि जिसमें कि आप जिसको फैमिली फार्म कहते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, फैमिली फार्म्स वो है कि जहां पर कि फैमिली जो है वो एक छोटे प्लॉट को छोटा, अब वो बहुत रिलेटिव टर्म है, मैं छोटा कह रहा हूँ यूनाइटेड के कंपैरिजन में या कम्युनिस्ट रशिया के कंपैरिजन। तो जो तीसरे तरीके का सिस्टम है वो फैमिली फार्मिंग का उसे कह लीजिए, उसे ऑनर कल्टीवेटर फार्मिंग सिस्टम कह लीजिए, पेजेंट प्रोप्राइटरशिप कह लीजिए। तो ये जो तीसरे तरीके का सिस्टम है इसमें आप छोटे जो प्लॉट हैं वो उनका एक सिस्टम है, उसमें की जो ऑनर है वो एक छोटे लैंड पैच ऑफ लैंड का मालिक। तो चरण सिंह जो हैं ये पहले दोनों ही मॉडल्स के अगेंस्ट, और जो तीसरे तरीके का ये जो फैमिली फार्म फैमिली फार्मिंग सिस्टम है इसके हिमायती है। दुनिया भर में जो एग्रीकल्चर तो आप देखेंगे उस टाइम का जो एक्चुअली इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है उसको देखेंगे तो इंडिया में भी आप देखेंगे कि तकरीबन लीडर्स जो थे वो जॉइंट फार्मिंग ये कम्युनिस्ट टाइप की जो है उसके हिमायती थे। चरण सिंह मतलब उस मामले में फिर से बहुत माइनॉरिटी में थे और यूनिक थे कि जो इस तीसरे तरीके के मॉडल का को डिफेंड कर रहे थे। बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर्स को हम देखें उस टाइम के, नेहरू की ही बात नहीं है, बहुत और जो दूसरे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स जिनके भी हम नाम जानते हैं, तो बहुत तकरीबन सबके विचार कोऑपरेटिव फार्मिंग के समर्थन में थे। लेकिन चरण सिंह जो है वो इस कोऑपरेटिव फार्मिंग के अगेंस्ट बेसिकली चार तर्क देते हैं और मुख्यतः, और वो चार तर्क को थोड़ा डिटेल में डेवलप करते हैं अपनी बुक में, और यही चार तर्क मोटे तौर पे कैपिटलिस्ट फार्मिंग के भी अगेंस्ट हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि वो एक दुनिया भर के आंकड़े जुटा के इंडिया में पहले व्यक्ति थे ये कहने वाले कि जो एकड़ बाय एकड़ अगर हम देखें, अगर हम एक एकड़ को यूनिट माने तो जो स्मॉल फार्म्स हैं, जो फैमिली फार्म्स हैं, दे प्रोड्यूस मोर देन द कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट बिग फार्म्स। अब ये एक यूनिक तरीके का आर्गुमेंट था उस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि तकरीबन सब लोग ये मानते थे कि कैपिटलिस्ट फार्म होगा या कम्युनिस्ट फार्म होगा, क्योंकि वो बड़े स्तर पे होता है खेती, तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। एक्चुअली इसका भी अगर आप एक इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री देखेंगे इस आर्गुमेंट की, तो ये बहुत हद तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उससे जो एमिनेट हुई जो सेंसिबिलिटीज थी उसकी पैदाइश था ये आर्गुमेंट। मैंने इसकी हिस्ट्री ट्रेस करने की कोशिश की इस आर्गुमेंट की, तो आप देखेंगे कि ये जो कम्युनिस्ट फार्मिंग की जो बात कर रहे थे, ज्वाइंट फार्मिंग की, ये भी बहुत हद तक वहीं से आर्गुमेंट बोरो कर रहे थे अमेरिकन फार्मिंग से। तो बिग फार्म्स आर अ काइंड ऑफ फेटिश फॉर बोथ कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, यू नो, बोथ फॉर कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। तो इसके अगेंस्ट वो कहते हैं कि और ये एक नोवल आर्गुमेंट था उस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इंडिया में तो उस तरीके की बात बहुत इस तरीके की स्टडी थी भी नहीं, तो वो बहुत जगह के आंकड़े जुटा के ये कहते हैं कि जो बड़ा फार्म है अगर हम एकड़ को यूनिट माने तो उसमें प्रोडक्शन कम होती है, स्मॉल फार्म्स प्रोड्यूस मोर। इंटरेस्टिंगली यही आर्गुमेंट बाद में 1960 के दशक में, और इस चीज को उनके वो 1930s के जो आर्टिकल से मैं बता रहा था, पहले जिक्र कर रहा था, उनमें भी जब उनके पर्सनल पेपर्स देखते हैं तो उनमें भी वो जिक्र करते हैं इस बात का। तो वो 1930s से आप सोचिए किस विषय पर सोच रहे हैं कि आजाद, जब भारत आजाद होगा तो उसके बाद इंडिया में किस तरीके का लैंड सिस्टम एडॉप्ट किया जाना चाहिए और कौन सा उसके लिए एक सबसे बेहतर सिस्टम होगा। और फिर अगर आप आगे आते हैं कि फिर जब वो किताब लिखते हैं, मान लीजिए 47 में जो पॉल्यूशन ऑफ जमींदारी टू अल्टरनेटिव्स और 1959 के ज्वाइंट फार्मिंग एक्ट, इस सही आर्गुमेंट को वो डेवलप करते हैं और दुनिया भर के आंकड़े जुटा के, स्विट्जरलैंड से लेके और मेरठ तक के आंकड़े वो जुटाते हैं और एस्टेब्लिश करने के लिए कि जैसे जैसे फार्म का साइज बढ़ता है वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी कम होती है। इसको एक पॉलिटिकल इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट चली इंडिया में, जिसको इनवर्स रिलेशनशिप डिबेट कहा जाता है। टेरेंस पेरिस है, उन्होंने इस बारे में लिखा भी है कि इनवर्स रिलेशनशिप जो डिबेट है वो बेसिकली है कि जैसे जैसे फार्म का साइज बढ़ता है वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी कम होती है, तो दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो टर्नसिंग की राइटिंग्स में ये 1930s से हमें देखने को मिलता है, और लेकिन ये इंडिया में जब एकेडेमिक्स में ये बात शुरू हुई वो हुई अमरत सेन एक 1960s में एक आर्टिकल लिखते हैं जिसमें कि वो इस बारे में बात करते हैं कि जो छोटा फार्म है वो जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा अगर आप पर यूनिट प्रोडक्शन देखेंगे। तो जो बाद में एकेडेमिक जो हल्के हैं उनमें जो बात 1960s में आती है, चरण सिंह अपनी राइटिंग्स में वो 1930s से वो बात अपनी राइटिंग्स में कह रहे हैं, लेकिन किसी भी इंडियन एकेडेमिक ने जब ये डिबेट हुई बाद में, और इस बारे में बहुत नामी लोगों ने लिखा, अमृत सेन को तो हम सब जानते ही हैं और बहुत नामी लोगों ने लिखा, उनमें से कोई भी चरण सिंह की राइटिंग्स को रेफर नहीं करता, लेकिन ये आर्गुमेंट उनकी राइटिंग्स में बहुत पहले से मौजूद है। तो इससे पहले वो यूरोप में इस तरीके की रिसर्च हुई थी और चरण सिंह का अपना आर्गुमेंट वहां से इन्फ्लुएंस था। खैर, तो हम बात करते हैं कि तीन तरीके के जो मॉडल हैं, इनमें से पहला आर्गुमेंट जो फैमिली फार्म के समर्थन में चरण सिंह देते हैं वो ये देते हैं कि भाई इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो एक तरीके से जो जो कम्युनिस्ट जो राइटिंग्स थी उनमें अगर हम देखें कि उनके जो भी इम्पोर्टेंट इंटेलेक्चुअल्स थे, उन सब का एक बहुत इम्पोर्टेंट फोकस ये था कि बड़े फार्म होने चाहिए क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, उल्टा कम हो सकती है, और ऐसा ही दुनिया में हुआ। जब दुनिया भर में ये इस तरीके के फार्म्स अडॉप्ट किए गए तो हमने देखा कि इट लेड टू हॉरेंडस ट्रेजेडीज। एक्चुअली जैसे कि यूक्रेन आजकल खूब चर्चा में है ना, यूक्रेन में इस तरीके की फार्मिंग अडॉप्ट हुई और उसका रिजल्ट हम जानते हैं, वहां पर एक होरोडोमर करके एक फेमीन आया, यूक्रेनियन फेमीन उसे कहते हैं, जो प्राइमरली कोऑपरेटिव फार्मिंग का रिजल्ट था, जिसमें कि लोग कहते हैं इतने लोग मारे गए जितने की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं मारे गए। ये हमसे छुपाई गई है ये चीजें कि किस तरीके की तो इस वही चीजें जब चाइना में अडॉप्ट की गई 1950s में, और चाइना से काफी इंस्पायर्ड थे आज, जैसे आजकल हम चाइना से इंस्पायर्ड उस टाइम पर भी थे, तो उस टाइम पर दूसरे ढंग से थे। तो चरण सिंह की जो राइटिंग्स हैं उनमें उस सारे मॉडल का क्रिटिक भी मिलता है। तो जब चाइना में ये फार्मिंग अडॉप्ट हुई तो वहां भी आप देखेंगे कि लेट 1950s में बहुत बड़े पैमाने पर अकाल और भुखमरी फैले,
बिल्कुल, तो क्योंकि ग्रेटली फॉरवर्ड जो था और कल्चरल एग्जैक्टली में होगा माओ का, तो सारा मतलब वो बहुत उससे वो सक्सेसफुल मॉडल नहीं था कहीं से भी,
और उसके जो कोर में था वो था कोऑपरेटिव फार्मिंग या जॉइंट फार्मिंग का फेलियर। तो जो चरण सिंह जो बहुत सतही तौर पे हमें जो आइडिया बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि अरे भाई सब मिलके खेती करेंगे इसमें क्या दिक्कत है, देखो फिर सब बांट के खाएंगे, लेकिन जब अगर उसके फाइनल डिटेल्स में हम जाते हैं, जैसे कि चरण सिंह गए तो उन्होंने उस चीज को कैप्चर किया कि कैसे ये एक बहुत खतरनाक आइडिया है और दुनिया भर में ऐसा हुआ, बाकी सारे देश में घाना यूथोपिया और बाकी सारी जगहों पर भी ये कोऑपरेटिव फार्मिंग का मॉडल अडॉप्ट किया गया और तकरीबन सब जगह ये फेल हुआ एक्सेप्ट एक जगह को छोड़ के इसराइल को, क्योंकि वहां की कंडीशंस थोड़ी अलग हैं और सोसाइटी का स्ट्रक्चर बहुत अलग है, तो वहाँ के जो कोऑपरेटिव फार्मिंग उसे एक्चुअली कहना भी नहीं चाहिए। तो पॉइंट है कि ये मॉडल जो कोऑपरेटिव फार्मिंग का था ये दुनिया भर में फेल हुआ और सोवियत यूनियन के फेलर में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट योगदान था। तो वी वर सेव्ड फ्रॉम दिस डिजास्टर एंड दिस कैटेस्ट्रॉफी बिकॉज नॉट इफ वी कांट से बिकॉज ऑफ चरण सिंह, चरण सिंह एटलीस्ट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एंड हिज आइडियाज वर प्रोफेटिक इन दिस रिगार्ड, द काइंड ऑफ प्रेडिक्शंस ही मेड अबाउट दीज बिग कोऑपरेटिव फार्म्स, दोज प्रेडिक्शंस एब्सोल्युटली केम ट्रू इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड और तो इस तरीके से ये तो पहला तर्क जो था उनका ये था। दूसरा वो जैसे दूसरे और भी तर्क देते हैं, उसमें एक जो लास्ट वाला जो चीज है उस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, उसमें वो कहते हैं कि अगर किसी देश में जो प्राइमरली एग्रीरियन कंट्री, अगर आप उसमें लोकतंत्र बनाना चाहते हैं जिसमें कि आपकी डेमोक्रेसी नेसेंट स्टेज पे है जैसा कि उस टाइम पे इंडिया में थी, तो इन ऑर्डर टू नर्चर दैट नेसेंट डेमोक्रेसी यू नीड अ सिस्टम ऑफ स्मॉल फार्म्स व्हिच विल बी इन कॉन्सोनेंस एंड इट विल बी कंड्यूसिव टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड इट विल एक्चुअली रीइन्फोर्स डेमोक्रेटिक इथॉस एंड सो ऑन। ये अपने आप में मुझे एक पर्सनली बहुत नोवल आर्गुमेंट लगा। तो मैं जो आपको कह रहा था कि उनकी राइटिंग्स इकोनॉमिक्स की राइटिंग्स नहीं है, जैसे कि कोई प्योर खाटी इकोनॉमिस्ट इस एस्पेक्ट को मिस कर देगा डेमोक्रेसी वाले एस्पेक्ट, तो वो पॉलिटिकल इकोनॉमी की राइटिंग्स हैं जिनमें कि दोनों चीजों को साथ लेके वो चल रहे हैं।
जी जी,
तो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में उनके बात।
बिल्कुल सर, तो ये एक आइडिया हमने तफसील से काफी डिस्कस किया। सर दो तीन आइडियाज आपने मतलब टच किए हैं अपने पेपर में, पीडब्ल्यू वाले में, कास्ट का आपने बताया, जिक्र किया थोड़ा सा हमने कि मतलब हाउ एंटी कास्ट ही वाज, और थोड़ा सा अर्बन बायस के भी बात की कि जो सारा पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है हिंदुस्तान का वो मतलब एंटी रूरल और उसका मतलब है ही नज़रिया बहुत एक प्रेजुडिस है उसके बिहेवियर में। लेकिन मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट आइडिया जो आपने मेंशन किया है आर्टिकल में उस पर ले जाऊँगा, वो है हिज क्रिटिक ऑफ हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे वो कोऑपरेटिव फार्मिंग और फ्री मार्केट बेस्ड एग्रीकल्चर के मतलब वो उन्हें इंडिया के हिसाब से सूटेबल नहीं लगता था। ये हमने एक डिबेट जिसे आप ने स्टार्टिंग किया था इसका कॉन्वर्जेशन का अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट से, तो उस टाइम पे जो ये मतलब थियरी है डेवलपमेंट की ये 50s-60s में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स बहुत अपने उरूज पे जा रही है, और इस टाइम पे चौधरी साहब जो हैं एक दूसरा आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि इस तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो नॉन सस्टेनेबल है लॉन्गर टर्म में। तो और आज शायद हम उसको सच होता भी देख रहे हैं, जैसे आपकी वो जो स्मॉल फार्म वाली बात है कि इट प्रोड्यूसेस मोर एक्चुअली, और बाद में वो प्रूव भी हुआ अलग अलग तरीकों से जब लोगों ने इस पर रिसर्च करी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली चीज भी है कि एक्चुअली अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर इस नई सदी में मूव कर गए हैं, तो वो शायद 50 साल पहले वो आइडिया शायद किसी के दिमाग में ना आए हों या इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फ्रेमवर्क से किसी ने देखा हो, लेकिन हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो क्रिटिक है और अनसस्टेनेबिलिटी इस तरह की डेवलपमेंट की वो उस टाइम पे अपने पेपर्स में अपने राइटिंग्स में वो उसको कहीं ना कहीं मेंशन कर रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि वो विजन था उनमें या वो एक बिल्कुल जमीनी सतह से जुड़े हुए थे, फार्मिंग को समझते थे, इसलिए वो इस तरह के आइडिया पिच कर पाए उस टाइम पे?
हाँ निशांत, अगर हम वो कॉन्टेक्स्ट देखें तब का 1950s का जब वो ये आर्गुमेंट फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो इफ यू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट इंडस्ट्रियलिज्म was the ruling idea of the time.
बिल्कुल बिल्कुल सर,
ठीक है। अगर हम इंडिया का सेकंड फाइव ईयर प्लान देखें, थर्ड फाइव ईयर प्लान देखें, तो उनके कोर में है बिग इंडस्ट्रीज, और केवल इंडिया की बात नहीं है, तकरीबन सारी जगहों पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इसी तरीके की सोच थी। और इसके सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, इसके पीछे बहुत डीप साइकोलॉजिकल यू नो इम्पल्सिस भी हैं अगर हम उसको थोड़ा डीपली ट्रेस करें तो इंडस्ट्रियलिज्म जो है वो रूलिंग आइडिया था उस वक्त का. चरण सिंह ये कहते हैं, चरण सिंह वॉज नॉट अगेंस्ट इंडस्ट्रीज, ये लाइक गांधी, गांधी वॉज ऑल्सो नॉट अगेंस्ट इंडस्ट्रीज, बट देयर क्वारल एंड देयर इशू वॉज दैट दे constantly said that we need to ask what kind of industries do we need. In fact, Chan Singh said that we need more industrialization, but of a different kind, like Gandhi. So, और Chan Singh जो हैं इस बात में फिर से गांधी से काफी influenced हैं. और गांधी इसको इस बात गांधी के विचारों में ये बात thought के level पे मिलती है. Chan Singh उसको एक एक स्कॉलरली फ्रेमवर्क देते हैं जिसमें कि वो एक इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट, वो दुनिया भर के जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री थे उस वक्त के उनकी एक टाइपोलॉजी ही डेवलप्स इन हिज राइटिंग्स. और वो टाइपोलॉजी आप देखेंगे कि उनकी जो तकरीबन सारी किताबों में ही मिलेगी जो 1959 ऑनवर्ड्स उन्होंने लिखी एटलीस्ट. तो उसमें वो कहते हैं, पहले वालों में भी थोड़ा सा उसका ग्लिम्पसेस मिलते हैं. तो वो ये कहते हैं कि भाई दुनिया भर में जो इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज हैं वो तीन चार कैटेगरीज में उनको बांट सकते हैं. पहली कैटेगरी है जैसे कि जहां पर कि जो कॉलोनाइजर्स हैं उनकी, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री. तो इनकी जो इनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है दैट वाज फेड बाय कॉलोनियलिज्म एंड व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड इन दीज कंट्रीज सो द सरप्लस पॉपुलेशन ऑफ दीज कंट्रीज वर एक्सपोर्टेड टू न्यू लैंड्स like in New Zealand, Australia, North America, South America and so on. तो जब तो ये जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाया इन सारी वजहों से. दूसरी कैटेगरी के वो देश हैं जैसे कि जिनके यहाँ पर लैंड या पर्सन रिसोर्स रेशियो बहुत फेवरेबल है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे कि यूएसएसआर, जहां पर कि लोग कम है. आपको पता है कि रशिया देखिए आज के टाइम पर कितना बड़ा है ना, और हमारा हाँ, लेकिन हमारा एक स्टेट ग्रेट उत्तर प्रदेश वो रशिया से बड़ा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. अगर उत्तर प्रदेश देश होता तो दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होता पॉपुलेशन वाइज, है ना. तो इन चीजों के मतलब अगर हम इन चीजों को इन पिक्यूलियरिटीज और स्पेसिफिक सिटीज को अगर हम ध्यान रखें तो हम पाते हैं कि जो सेकंड कैटेगरी के जो देश हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसएसआर, ये वो हैं कि जहां पर बहुत रिसोर्सेज और जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनका बहुत फेवरेबल रेशियो है. तो इसलिए उनकी इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल इसका रहा. इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी थे पर ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था. तीसरे तरीके के वो कंट्रीज हैं वो ये कहते हैं कि जहां पर कि हम पाते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो बाद में आई और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले हो गया. अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और नोवल आर्गुमेंट है जिसको सिक्वेंशियलिटी मैंने उसमें लिखा है अपने आर्टिकल. तो सिक्वेंशियलिटी का आर्गुमेंट ये है कि भाई ये अगर हम मॉडर्निटी जो है एक सुदीप्त कविराज हैं उनसे वो ऐसा कहते हैं कि भाई जो मॉडर्निटी है अगर उसको हम एक कॉन्स्टेलेशन माने तो उसमें जो उसके अलग अलग उसके पार्ट्स हैं उनकी क्या सीक्वेंस है इससे बहुत हद तक मॉडर्निटी का नेचर तय होगा. तो कुछ कुछ ऐसी ही बात चरण सिंह ने हमें के आर्गुमेंट्स में देखने को मिलती है. वो कह रहे हैं कि इंडिया में क्योंकि डेमोक्रेसी पहले आई और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बाद में आना है, दिस विल इंपैक्ट द नेचर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आल्सो, एंड देयरफॉर आवर पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड बी स्लो एज कंपेयर टू अदर्स एंड इट इज बाउंड टू बी स्लो बिकॉज वी आर एज ही सेज वी आर बर्डनड विद अ फुल्ली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ प्लीज रिमेंबर ही इज नॉट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, इनफैक्ट ही वॉज डीपली डेमोक्रेटिक लीडर in the sense that he had deep faith in democracy. लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस sequentiality की वजह से और we should not abandon democracy for industrialization or so-called development because democracy he believed that is very important. तो इन सारी चीजों के बेस पे वो कहते हैं कि हमारा जो industrialization जो है वो उस तरीके का high industrialism नहीं हो सकता जैसा कि वेस्ट में है. एक जेम्स स्कॉट नाम के स्कॉलर है वो एक टर्म यूज मॉडर्निज्म. तो मैंने वो एक टर्म यूज की है अपने आर्टिकल में कि वो ही इज अगेंस्ट हाई मॉडर्निटी, ही इज नॉट अगेंस्ट मॉडर्निटी, ही इज एक्चुअली आर्ग्यूइंग दैट वी शुड कंस्ट्रक्ट आर ओन मॉडर्निटी इन आर ओन वे ऑन आर ओन कंडीशंस एंड इन आर ओन कॉन्टेक्स्ट एंड कीपिंग इन माइंड आर ओन स्पेसिफिसिटीज. तो इस तरीके से एक जो यूरोसेंट्रिक नोशन ऑफ डेवलपमेंट है उसका एक क्रिटिक, और यूरोसेंट्रिक नोशन ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म उसका एक क्रिटिक हमें चरण सिंह की राइटिंग्स में देखने को मिलता है, जो कि कई मामलों में उस टाइम पर यूनिक था, क्योंकि ये आइडियाज कुछ बाद में थोड़े बहुत आज के टाइम पर लोग जानते हैं, उस टाइम पर नहीं जानते थे.
बिल्कुल, उस पॉलिटिकल जो कॉन्शियसनेस थी उसमें था ही नहीं शायद ये.
जी बिल्कुल,
जो ये जो टर्म्स हैं और ये सब सोच है, और मेरे ख्याल से जो आपने बात की, एक सुई जनरेस इंडियन मॉडल देने का उन्होंने काम किया कि हम भी अपना
कुछ उसे इंडियन भी नहीं कहना चाहिए उसे मेरे ख्याल से, क्योंकि दिस मॉडल इज नॉट ओनली इफ वी कॉल दिस अ मॉडल, आई डोंट, मॉडल इज अ वेरी यू नो रिस्ट्रिक्टिव टर्म, आई कॉल इट अ विजन फ्रेमवर्क व्हाटएवर. So this vision is actually equally relevant for many other similarly placed societies. It is not only limited to India.
Anti-Eurocentric vision उन्होंने दिया, क्योंकि हमारी सारी जो थीसिस है डेवलपमेंट की और आइडियाज है वो हम बोलते थे कि इंडिया 50s-60s में, कि यूरोप से हम 20 साल पीछे 30 साल पीछे हैं, क्योंकि हाँ. हम उनको जो है नॉर्म बना लिया है और वी आर फॉलोइंग देम एक तरीके से.
हाँ, जो ये पीछे और आगे का वो है ना, ये जो कि भाई हम पीछे और वो आगे हैं, और हम कुछ दौड़ में हैं और वो डेवलप्ड है और हम डेवलपिंग है और एक दिन हम भी डेवलप्ड हो जाएंगे. लीनियर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है जो, तो इसका एक तरीके का क्रिटिक जो है वो चरण सिंह में मिलता है, क्योंकि और ये अपने आप में एक नॉवल बात है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ही कम लीडर्स इसके बियॉन्ड सोच पा रहे थे, कुछ ही लोग थे विरले जो इसके बियॉन्ड सोच पाए, जैसे कि गांधी और चंद सिंह, हिज ऑन आइडियाज वर क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी.
बिल्कुल सर, आपकी बातों से यही लगता है. और यूरोसेंट्रिक जो पैराडाइम है वो शायद उन्होंने तोड़ने का भी काम किया, पहले गांधी ने और फिर चरण सिंह जी ने, जैसे आपने बताया पॉलिटिकल इकोनॉमी के क्षेत्र में. मेरे सर बहुत टाइम ले लिया आपका, तो दो सवाल और बचे हैं, ब्रीफ चाहूंगा आपसे जवाब. एक तो चरण सिंह की जो पूरी थियरी है उनका एक क्रिटिसिज्म भी है, आपने खुद भी पेपर में मेंशन किया है कि जो एक वो बात आर्गुमेंट है कि ये लेबरर की बात कहीं नहीं करते, जो काश्तकार है, जो मजदूर है, जो खेतीर मजदूर है, कि ये सिर्फ छोटे किसान, ये फार्मर लीडर थे, लेबरर्स का उनका कहीं जिक्र नहीं आता है, और एक एग्रीकल्चर फंडामेंटलिस्ट है, क्योंकि अंबेडकर की राइटिंग में हमें दिखता है, वो बोलते हैं कि विलेज इज नॉट अ ड्रीम प्लेस, एक रोमांटिसिज्म जो है शहरी लोग रखते हैं, गाँव का जीवन ऐसा होगा, लेकिन जितनी सामाजिक बुराइयां हैं वो गांव में कहीं ज्यादा इंटरेस्ट हैं. तो एक तो मेरा आपका जवाब जानना चाहूंगा इस बारे में कि जो ये लेबर वाला आर्गुमेंट है, लेबर वाला, और ये कि एक विलेज फंडामेंटलिस्ट है वो शायद मॉडर्निटी की जरूरत है उनको समझ नहीं पा रहे थे.
मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा इसे, ऐसा नहीं लिखा है मैंने कि वो इस तरीके का विलेज फंडामेंट, लोग ऐसा कह सकते हैं कोई.
हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं.
हाँ,
तो आपका क्या,
मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि हाँ, देखिए हम कोई भी विजन जो है उसके कुछ कोर होता है, कुछ उसकी पेरिफेरी होती है. जो कोर है चरण सिंह की राइटिंग्स में वो, ये बात ठीक है कि वो खेती हर उसके कोर में है, लेकिन ये कहना कि वो जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनके लिए बिल्कुल उनको पूरी तरीके से नजरअंदाज करते हैं अपनी राइटिंग्स में, ये कहना ठीक नहीं. क्योंकि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन सब की बात करते हैं, जिसमें कि वो कहते हैं कि बेसिकली, क्योंकि इंडिया में ये तो बात है ही कि एग्रीकल्चर जो है वो ओवरबर्डन है, लेकिन वो उसको अनबर्डन करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि जो हाई इंडस्ट्रियलिज्म है वो उससे नहीं होगा. उसके लिए हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैंडीक्राफ्ट और इन सब पर जोर देना होगा. तो उनमें कौन लोग काम करेंगे? ऑफ कोर्स वही लोग काम करेंगे कि जो फिलहाल खेती, जो जिसे हम आज खेतिहर मजदूर कहते हैं. तो ये कहना, हाँ ये जरूर बात है कि व्हेन इट केम टू द इंटरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट ही हैड द गम्पशन टू स्टैंड अगेंस्ट नेहरू, राइट, लेकिन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स ही रोट एंड ही डिड ऑल्सो समथिंग, but you know that was not his core, that was not the part of his core vision. So wo kai logo ko ye lag sakta hai ki wo afterthought hai, अब उसको बेहतर कोई भी टर्म आप कोई भी टर्म यूज करें, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि उसका एक कोर नहीं है, वो पेरिफेरी में ये आर्गुमेंट जरूर है। तो ये कहना कि एंटी एग्रीकल्चर लेबरर है, ये बात ठीक नहीं है। ये उन पर जो आरोप है ये तकरीबन सारे एलीट लगाते रहे, मुझे ये बात ठीक नहीं लगती। मुझे लगता है कि उनका भी इंटरेस्ट उनके विजन में उसका ध्यान है, रखा गया है, ऑफ कोर्स वो उसके केंद्र में नहीं।
जी जी, तो सर आखिरी सवाल आपसे मेरा ये होगा कि हम थोड़ा पॉलिटिकल इकोनॉमी की दुनिया से भी बाहर निकलें और पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल प्रेडिक्शन पे अगर आए, तो मैं भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा, आप तो सर टीचर ही हैं, तो 90s तक हम देखते हैं कि फार्मर एज अ पॉलिटिकल कैटेगरी भी एग्जिस्ट करता था, उसकी एक अपनी खास तरह की पॉलिटिक्स थी। फार्मर पॉलिटिक्स इंडिया में 70s में 80s में बहुत मतलब काफी तगड़ी पॉलिटिक्स थी। 90s के बाद से वो जो है पोस्ट लिबरलाइजेशन वो कहीं खोसा गया फार्मर इंडियन पॉलिटिक्स में, शायद वो सेंटर ही नहीं रहा, वो कहीं गुम हो गया मीडिया की बातों में भी। दोबारा फार्मर मूवमेंट में वो कुछ लाइमलाइट में आया, तो क्या इस कॉन्टेक्स्ट में पिछले 30 साल के पोस्ट लिबरलाइजेशन हम बात करें और चरण सिंह की जी की राइटिंग चौधरी साहब की, तो क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में एक पॉलिटिकल कैटेगरी पॉलिटिकल ग्रुप के तौर पे जो आज फार्मिंग के नाम पे हमारे देश में स्मॉल फार्मर्स हैं, बड़े बिग लैंड ओनर्स तो अब कम बचे हैं, इतना लैंड एक्वायर हो रहा है, तो क्या एक पॉलिटिकल कैटेगरी बन सकता है ये ग्रुप, या इसमें इतनी ज्यादा मतलब क्या कहते हैं ट्रेड यूनियनिज्म और फार्मर मूवमेंट के जो फार्मर यूनियंस हैं और आपका कास्ट डिवाइड इतना है कि ये दोबारा इसको 1780s के तरीके से एनविजन करना फार्मर एज अ कैटेगरी या किसी फार्मर लीडर का उभरना हिंदुस्तान में अभी नामुमकिन जैसा है, तो आपका क्या विचार है इस बारे में?
हम सब स्टूडेंट्स ही हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो बात ये है कि जो फार्मर्स पॉलिटिक्स है वो तो बात ठीक है कि उस वक्त पर बहुत पावरफुल थी और चंद सिंह प्लेड अ की रोल इन इन दैट पॉलिटिक्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ दैट पॉलिटिक्स। हाँ, और उसके बाद भी चंद सिंह के 1987 में ही डाइड और 85 में वो बेडरिडन हो गए और उसके बाद 87 में ही डाइड, एंड आफ्टर हिज डेथ आल्सो फॉर सम टाइम फार्मिंग फार्मर्स पॉलिटिक्स रिमेन्ड रेलेवेंट एंड इट वाज एट द नेशनल स्टेज इन द फॉर्म ऑफ नॉन पार्टी पॉलिटिक्स, जैसे BKU मूवमेंट था, शेतकारी संगठन था, हाउस में कर्नाटक में KRRS था, कर्नाटक राज्य रहित संगम, और आंध्रा में भी मूवमेंट था, तमिलनाडु में भी था, गुजरात में क्रिदुक समाज था, इस तरीके के मूवमेंट्स रहे। तो अगर आप इन सब लोगों का भी अगर एक इंटेलेक्चुअल पेडिग्री ट्रेस करें तो वो चरण सिंह तक जाती है। तो चरण सिंह मुझे लगता है कि जैसे जो जो प्लेस तो वो किसान मूवमेंट के अम्बेडकर हैं ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इंटेलेक्चुअल जो थ्रस्ट है पूरा वो उनकी राइटिंग्स और उनके पॉलिटिकल प्रैक्टिस में और उन्होंने उनसे मिलता है। तो हालांकि बहुत सारे डिसिमिलैरिटीज भी हैं ये सुपमा में, पर लेकिन कोई ऐसा कह सकता है। खैर, तो अब ये जो फार्मर्स मूवमेंट हुआ रिसेंटली, इसमें भी और चरण सिंह में भी कई पैरेलल्स हैं। मैं उनमें तो नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन ये देखिए कि ये उसी तरीके की पॉलिटिक्स का ही एक मैनिफेस्टेशन है। मैंने इस पे एक रिसेंटली एक आर्टिकल भी लिखा था कि जिसमें कि कॉन्टिन्यूटी जो पिछले मूवमेंट थे और इसमें कुछ कॉन्टिन्यूटीज हैं, कोर कॉन्टिन्यूटीज फार्मर्स मूवमेंट में, और मैंने बहुत क्लोजली देखा भी क्योंकि मैं रोज ही देखता था, एक साल तक इसे मैंने स्टडी भी किया, देखा भी
इस मूवमेंट को। सेंटर ऑफ इट
तो सो आई वाज यू नो ऑब्जर्विंग इट एवरी डे एंड प्रैक्टिसिंग इट एवरी डे, तो आई वाज पार्ट ऑफ इट्स एवरी डे, द पॉइंट इज दैट। तो उसमें हम जैसा मैं कह रहा था कि कॉन्टिन्यूटीज भी हैं, तो इस तरीके का मूवमेंट होगा फ्यूचर में। एक देखिए, मैं इससे बियॉन्ड एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने क्या किया है ना, बाकी जो भी भारत में आंदोलन हुए उन सब में आंदोलनों में वो आंदोलन जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो उनमें जो भीड़ जुटाने की जो क्षमता है, जो लोगों को लाने की क्षमता है, वो किसान आंदोलनों में अनपैरेलल्ड है। तो अगर लेकिन इसका एक फायदा तो ये है कि भाई हम लाइमलाइट में आते हैं, अपनी बात भी कुछ मनवा लेते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि जब ये भीड़ नहीं होती तो हमको लगता है आंदोलन नहीं, बाकी सारे मूवमेंट, जैसे अगर हम वुमेन मूवमेंट की बात करें, जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं वो एवरीडे के मूवमेंट, कोई भी और आंदोलन आप देखेंगे एवरीडे के मूवमेंट है, जिसमें कि भीड़ जुटाना उनके लिए आवश्यक नहीं आंदोलन होने के लिए। हमारे दिमाग में इस तरीके का बन गया है कि आंदोलन का मतलब भीड़ और मतलब कहीं धरना प्रदर्शन और सड़क पर प्रदर्शन, लेकिन आंदोलन जो है वो इससे अलग स्तर पर भी चलते हैं। वो लोगों में एक जागरूकता के स्तर पर चलते हैं, वो एकेडेमिक्स में चलते हैं, वो यूनिवर्सिटीज में चलते हैं, वो आप और हम जब बात कर रहे हैं इस बारे में इस स्तर पर भी चलते हैं। तो किसान आंदोलन इन सारे बाकी स्तरों पर वो उसकी प्रेजेंस काफी कमजोर रही, क्योंकि उसने चरण सिंह के अलावा और कुछ और लोगों को अगर हम देखें, जैसे कि शरद जोशी की कुछ राइटिंग्स मिलती हैं, लेकिन ज्यादातर किसान लीडर्स जो हुए उन्होंने कोई इंटेलेक्चुअल काम करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें जी। तो इस लेवल पर हमें उस आंदोलन को जारी रखने की जरूरत है। अगर इस ये वो खाद पानी है जिससे कि ये सीड बेड है जिस पर कि आंदोलन बनेंगे, जब तक कोई आंदोलन का किसी आंदोलन का एक वैचारिक रूप, एक ऑल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर, एक उसका वैकल्पिक खाका भविष्य का, जब तक कोई आंदोलन नहीं करता तो वो बहुत लंबा आंदोलन हो नहीं सकता। वो ये होगा कि पीरियोडिक उसकी बातें होंगी, कुछ भीड़ जुटा लेंगे और उस टाइम पर हो सकता है कोई एक इशू डिमांड बेस्ड मूवमेंट होंगे, वो ट्रेड यूनियनिस्ट काइंड मूवमेंट होंगे कि एक डिमांड होगी, अच्छा डिमांड के अराउंड हमने बात मनवाई और फिर आंदोलन खत्म। किसान आंदोलन को एक बड़ी रूपरेखा प्रेजेंट करनी होगी कि जिसमें कि वो क्या हमारा अतीत था, क्या वर्तमान है और क्या भविष्य होगा। कोई भी मूवमेंट जब तक ये तीनों स्तरों पर काम नहीं करता, आप देखेंगे आज के स्तर पर, आज के टाइम पर जो मूवमेंट जिसने हमारी जो विच हैज कैप्चर्ड आवर माइंडस्केप्स, राइट, मूवमेंट का मतलब, जो मेरा मूवमेंट का मतलब यहाँ पर थोड़ा वाइडर है, यहाँ पर वो भीड़ से नहीं है जैसा मैं कह रहा था, कि विच जिसके बारे में हम रोज बात करते हैं कि भाई यहाँ पर ये बनना चाहिए, इसके नीचे तो ये निकलेगा खोदेंगे तो, और इसके नीचे तो मिलेगा ये, और that movement exists in the everyday of people,
right? वो तो center हो गया, तो आप खोलने वाली बात कर रहे हो ना, हाँ, तो politics का center में आ गई है वो चीज़ ना,
हाँ, तो
बाकी सब आशी
वो movement आप देखिए, वो movement क्योंकि रोजमर्रा का movement है, इसीलिए वो politics इतनी strong है,
उसकी तो ideology develop हो गई है ना,
हाँ, तो वो क्योंकि जब लोग घर में बैठे हैं तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। किसान मूवमेंट ने ये बहुत कीमत दे के अता किया, बहुत कीमत दे के ये चीज की कि एक साल तक हम सड़क पर बैठे, इतनी मुश्किलें झेली और उसके बाद हम अपनी बात को मनवा पाए। बाकी देखिए बाकी सारे मूवमेंट ये नहीं करते, इतनी हैवी प्राइस नहीं पे करते अपनी बात को डिस्कोर्स में लाने के लिए, ठीक है। तो बात ये है कि जब तक हम अपना डिस्कोर्स नहीं बनाएंगे, जब तक उसका एक, जैसा मैं कह रहा हूं, अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का एक खाका प्रस्तुत नहीं करेंगे और उसको लोगों तक लेकर नहीं जाएंगे और लोग उसके साथ अटैच्ड फील नहीं करेंगे, तब तक ये मूवमेंट लॉन्ग टर्म नहीं होंगे। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि ये जो मूवमेंट हमने अभी देखा, इस अगर ये इस स्तर पर हमने काम नहीं किया, मेरा ये डर है कि कहीं ये इस तरीके का लास्ट मूवमेंट ना हो किसानों के नाम पर, क्योंकि कोई भी राजनीति जो ये तो अब एक तरीके से ऐसा दिखता है कि इट वॉज The last fight of a dying animal, right? तो ऐसा भी इसको देख सकते हैं। अगर उस स्तर पर काम नहीं किया तो कोई भी संस्कृति, जो कि मुझे लगता है कि जैसे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की एक खास तरीके की एक कल्चर है, एग्रीकल्चर कल्चर कुछ भी आप उसे कहें, द लाइफ वर्ल्ड ऑफ एग्रीकल्चर, तो उस पर, उसको अगर हमने खाद पानी नहीं दिया और उस पर हमने काम नहीं किया बौद्धिक स्तर पर, मैं तो क्योंकि मेरा डोमेन वही है मैं उसी लेवल पर ही बात करूंगा, बौद्धिक स्तर पर जब तक उस पर देखिए, हमको मान लीजिए कि सारे फार्मर्स मूवमेंट जो उनको एक साथ लाना है, तो एक साथ लाने के लिए कुछ एक विजन तो होना चाहिए, ऐसा थोड़ा ही ना कि होलो कट्टे सारे हो जाओ,
कलेक्टिव नहीं हो चाहिए, एक और वो आइडियोलॉजी ही दे सकती है आपको, एक नैरेटिव, और वो
एक बिल्कुल, तो उसके लिए आपको उस पर रिसर्च करनी होगी, उस पर एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना होगा, उन चीजों को सिलेबस में लाना होगा। जैसे बाकी सारे मूवमेंट्स आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज में सिलेबस में हैं, लोग उनके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए, और होने भी चाहिए, जैसे मान लीजिए कि अगर वुमेन मूवमेंट की बात करें, हम जानते हैं कास्ट मूवमेंट की बात करें, कितने मूवमेंट, उनकी उनकी कुछ कॉन्सेप्चुअल कैटेगरीज हैं जो जिनके थ्रू दे लुक एट द वर्ल्ड. फार्मर्स मूवमेंट की इस तरीके की कॉन्सेप्चुअल कैटेगरीज भी नहीं है, उन पर कोई बहुत ज्यादा काम भी नहीं हुआ. तो वो कब तक हम वो एक स्रोत जो है, जो मैं कह रहा हूँ, उस पर कितने दिन तक टिके रहेंगे और उस बेस पर मतलब उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो भी सूख जाएगा ना. उसको और नर्चर नहीं करेंगे तो वो स्रोत भी सूख जाएगा. तो फ्यूचर का तो ऐसा है कि जो मैं कह रहा था कि अगर इस लेवल पर काम किया तो बिल्कुल मुझे लगता है कि दिस पॉलिटिक्स विल रिमेन रेलेवेंट. उसका एक वो आप कह सकते हैं कि फार्मर्स कम हो रहे हैं इसलिए कम होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसके बियॉन्ड भी लोगों के जिन बाकी कंट्रीज में या हमारे देश में भी जिनकी आबादी 7.5-8% है, 10% है, 15% है, उन लोगों के भी मूवमेंट काफी स्ट्रांग है. मूवमेंट का मतलब ये धरना प्रदर्शन वाले नहीं, हाँ. जो मैं कह रहा हूँ डिस्कोर्स के लेवल पे मूवमेंट. तो जब किसान जो है वो तो अभी भी ठीक ठाक है उनकी जो संख्या है. अगर हम माने कि वो और घट के 25% पे आ भी जाएगी तो 25% भी बहुत बड़ी संख्या है. तो अभी आने नहीं वाले 25% पे, लेकिन अगर आ भी जाए तो भी वो बहुत बड़ी संख्या है. और उस इतने बड़े तबके का एक ऑक्यूपेशनल कैटेगरी का मूवमेंट ना होना अपने आप में वो मतलब भारत के लिए भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी.
बिल्कुल बिल्कुल. और आपने बड़ी बजा बात फरमाई सर ये, क्योंकि मैं अभी रिफ्लेक्ट कर रहा था आपके इसी जो आपने पॉइंट हमारे सामने लेके आए कि वुमेन मूवमेंट है अभी जो एक क्या कह सकते हैं आप गे या लेस्बियन ट्रांस मूवमेंट चलते हैं उनका वो कोई ग्राउंड इतने नहीं है, लेकिन एक डिस्कोर्स के लेवल पे बहुत पावरफुल खासतौर पर वेस्टर्न मीडिया में सोशल जस्टिस के मूवमेंट हिंदुस्तान में रहे हैं, समाजवादियों का रहा है, मतलब सबका कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकल साइंस में स्कूल की किताबों से लेके कॉलेज के लेवल तक हम इनको पढ़ते रहे हैं आइडियाज के लेवल पे, लेकिन फार्मर्स फार्मिंग के बारे में. और मेरे ख्याल से चरण सिंह पे इसलिए इतना हैरानी होती है कि इतना उन्होंने किताबें लिखी पेपर्स लिखे लेकिन काम करने वाला कोई नहीं था और किसी ने शायद ध्यान भी नहीं दिया इतना, क्योंकि शायद पॉलिटिकल डिस्कोर्स में वो मतलब कोई कैटेगरी नहीं बन पाई एक तरीके से. तो प्रवीण सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
और हमें मैं एक बस लास्ट बात ये कह रहा था कि जैसे उनकी जो राइटिंग्स हैं उनको भी जैसे अंबेडकर की जो राइटिंग्स है, अंबेडकर की राइटिंग्स पर और चीजें लिखी गई, उन पर डेवलप की गई है ना, वैसे ही हमें चरण सिंह के भी साथ करने की जरूरत है कि चरण सिंह पर, क्योंकि उसकी उनकी हर जो कोई भी रचना है उसको हमें अपने कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए उसका कुछ रूपांतरण करना होता है, उसका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, तभी वो रेलेवेंट बनती है. वरना वो हमें लगेगा कि अरे ये उस टाइम की है, उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, आज रेलेवेंट नहीं है. ऐसा नहीं है, मतलब वो बात ठीक है कि कुछ चीजें वो बहुत कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है, लेकिन बहुत सारी चीजें कालजयी हैं, ऐसी हैं जो हैं उनकी राइटिंग्स में जिन पर आज भी बिल्ड कर सकते हैं. सही. तो वो काम भी जरूरी है.
बिल्कुल सर. और बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि आप कम से कम काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने लोग छोटू राम या चरण सिंह या बाकी जो फार्मर लीडर्स हैं या अपने नॉर्थ वेस्ट इंडिया, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी के इलाके से जो लीडर्स आए हैं, जो भी यहाँ थिंकिंग के लेवल पे काम हुआ, तो काफी कम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इट हैज बीन अ प्लेजर, अ डिलाइट टू टॉक टू यू. तो प्रवीण सर बहुत बहुत शुक्रिया.
बहुत बहुत शुक्रिया निशांत भाई, मजा आया बात करके, और इस काम को और आगे बढ़ाओ, और फिर कभी जरूर बात करेंगे.
बिल्कुल सर, बिल्कुल. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग.
थैंक यू सो मच.
थैंक यू सर.